الحمد لله رسول الله أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أخواتي المدران. میرے لاہور سے جانے سے پہلے سوالات کا یہ سلسلہ تھا جو باقی رہ گیا تھا. ایک سوال ہے کہ کیا یہ سچ ہے کہ روحانیت کی راہ میں بطور کانسٹیبل بھرتی ہونے والے زیادہ سے زیادہ صوبیدار کے درجے تک ہی پہنچ پاتے ہیں، لیکن چند مرد کامل ایسے ہیں جن کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد روحانیت کے مدارج بہت تیزی سے طے ہونے لگتے ہیں. سالوں کا سفر ہفتوں اور بعض اوقات ایک پل میں طے ہو جاتا ہے. میرے خیال میں تو روحانیت میں ایسی کوئی چیز ہے نہیں کہ کوئی آدمی لوئسٹ درجے سے بھرتی ہوتا ہے اور کوئی درمیان کے لیول سے بھرتی ہو جائے، کوئی ٹاپ لیول پر ہی اسٹریٹ وے بھرتی ہو. روحانیت میں شارٹ کٹس نہیں ہیں بالکل. ہم پاکستانی چونکہ اپنی جینز میں پڑی ہوئی چیزوں سے مجبور ہیں، ہمارا ذہن فوری طور پر جاتا ہی شارٹ کٹس کی طرف ہے. اور جس آدمی کو ہم بلندی پر گیا ہوا پاتے ہیں، ہم اس کے ماضی کے سفر پر نظر نہیں رکھتے، ہم اس کے حال پر نظر رکھتے ہیں کہ وہ یہاں آ کے بیٹھا ہے، اس مقام پر فائز ہے. اگر ہم ایسے کسی بھی انسان کی ماضی پر نظر رکھیں کہ یہ اس مقام تک آیا تو کس طرح پہنچا، تو پتہ یہ چلے گا کہ ہر وہ آدمی جو روحانیت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوا ہے، اس نے ایک بڑا لمبا سفر کاٹا ہے، طے کیا ہے، اس میں مشقتیں اٹھائی ہیں، اس نے صعوبتیں تمام طرح کی برداشت کی ہیں، پھر کہیں جا کے وہ یہاں پہنچا ہے. جو لوگ ہمیں ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ وہ مرشد کے پاس آئے اور مرشد صاحب نے انہیں جو ہی ان کی تربیت شروع کی، دو چار سال میں وہ ایک اعلیٰ مقام پر بٹھا دیے گئے، وہ بھی در حقیقت ہوتا یہ ہے کہ ان کا سفر بچپن سے جاری ہوا ہوا ہوتا ہے، ان کا سفر اور زیادہ لمبا ہوتا ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا. اگر ہم ان کی عادات دیکھیں بچپن سے اور ان عادات کو اگر ہم پرکھ لیں سنت پر، تو پتہ یہ چلے گا کہ ان نوئنگلی، ان انٹینشنلی، وہ سنت پر بچپن ہی سے عمل کرتا چلا آ رہا ہے بندہ. آپ ایسی کسی انسان کے بچپن کو کھنگالیے تو آپ کو کچھ چیزیں بڑی کامن ملیں گی. مثلاً وہ بندہ کسی شخص کو سخت باتوں کا جواب نہیں دے گا کبھی، اپنے اوپر لگنے والے الزامات کی صفائی پیش نہیں کرے گا، بس خاموش ہو جائے گا. دوسروں کے لیے قربانی کرتا وہ دکھائی دیتا بچپن ہی سے، اپنی ذات کی نفی کرتا دکھائی دے گا کہ اپنی خواہش کی کوئی چیز ہے، اسے اندازہ ہوا دوسرے کو پسند ہے، بچپن ہی میں چپ چاپ وہ دوسرے کے حوالے کر دے گا کہ یہ لے لیجئے، ہر ایک کا کام کر دے گا. تو یہ سنت کی ایسی چیزیں ہیں، اس میں آپ کو بچپن سے دکھائی دیں گی. آپ اس کے والدین سے بات کریں، پتہ کریں، تو یہ تمام چیزیں وہ. تو میں ہمیشہ یہاں ایک عرض کرتا ہوں کہ روحانیت کا سفر شروع ہو ہی نہیں سکتا کسی طرح تب وقت کہ انسان عبادات کے ساتھ ساتھ نیکی کی راہ نہ اپنا لے. ایسا شخص بچپن میں بھی کبھی آپ کو انتقام لیتا نہیں دکھائی دے گا، دل میں بات نہیں رکھے گا کسی کے بارے میں، तो ये मुजाहदे तो जो ही होश संभालता है वो उस वक्त से करता चला आया है। और मुर्शिद साहब के पास जब गया है तो रूह तो उसकी पॉलिश हुई भी है, मुर्शिद साहब ने उसको सिर्फ चैनलाइज किया है और कुछ नहीं किया। तो यूं सफर लगता ये है कि सालों का सफर वो हफ्तों में तय कर गया। उसका सफर ज्यादा लंबा होता है दर हकीकत। तो हमें जहन में ये रखना चाहिए कि रूहानियत में कहीं ना फेवरेटिज्म है। हाँ अलबत्ता ये जरूर है कि इसमें अता जरूर है, लेकिन वो टेम्पररी होती है। ये बिल्कुल इसी तरह कि अगर मेरे माँ बाप खुश हो कि मुझे 10-20 हज़ार रुपये इनाम दे दें तो 10-20 हज़ार रुपये कितना अर्सा चल जाएंगे मेरे पास, फिर मैं खाली का खाली रह जाऊँगा। अलबत्ता अगर वो मुझे बिजनेस करा दें और मैं बिजनेस में मेहनत करूँ, मेहनत फिर मुझे ही करनी पड़ेगी, तो उस बिजनेस से जो प्रॉफिट आएगा वो सारी उम्र मेरा चलता रहेगा। तो अता का मामला कुछ ऐसा ही है, अता टेम्पररी होती है। मुर्शिद किसी बात से खुश हो गए, उन्होंने अता कर दिया, और फिर अता जो मुर्शिद कर पाएगा वो तो बड़ी लिमिटेड है, क्योंकि रूहानियत ये तो नहीं है कि किसी आदमी की हुई दुआ कितनी पूरी होती है। ये तो कोई यार्ड स्टिक नहीं है रूहानियत की। करामात क्या सरदर्द होती हैं, ये भी कोई यार्ड स्टिक नहीं है। ये तो अता हो जाएगी, मुर्शिद अता कर देंगे, लेकिन वहां क्या होगा जब इल्म की कोई बात पूछ लेगा मुझसे आके, इल्म की बात कोई करेगा मेरे साथ। एक साहब हैं, उनको इल्म का शौक है अल्हम्दुलिल्लाह, इस लिहाज से वो मुझे अच्छे लगते हैं कि ना उन्हें कशफ करामात की कोई तमा है, ना उनको मुस्तजाबुद्दावात होने की ख्वाहिश है, ना उनको ये ख्वाहिश है कि लोग मेरे पास दुआ कराने के लिए आए, मुझे सलाम करें। वो इल्म के पीछे दौड़ते हैं, तो इस वजह से वो अच्छे लगते हैं मुझे कि इनको इल्म की तलब है। तो अभी हफ्ता पहले, हफ्ते 10 दिन हो गए होंगे, तो उनसे मुलाकात हुई, तो मैं लाइट मूड में उनकी टांग घसीट रहा था, तो उनसे मुझे मालूम है किताबों के शौकीन हैं, बहुत पढ़ते हैं किताबें, तो मैंने उनसे कहा कि आपने कशफुल महजूब पढ़ी होगी, एक बार फिर जाके पढ़िए और फिर मैं आपसे बात करूंगा इस मौजू पर। तो मैं उनसे ये अर्ज कर रहा था कि कशफुल महजूब जो आपने इस तरह से पढ़ी है उसके आखिरी चैप्टर्स पे चले जाइए, तो एक जगह दाता साहब ने थ्योरी ऑफ साइलेंस उसकी वजाहत की है। मुझे मालूम था कि वो अभी इल्म के उस मकाम पर नहीं है जहां कशफुल महजूब को पढ़ते हुए उनका जहन थ्योरी ऑफ साइलेंस की तरफ चला जाए। तो मैंने कहा आप जाके दोबारा पढ़ के आइए मेरे पास, फिर डिस्कस करेंगे इसे। इसी तरह थ्योरी ऑफ वननेस कशफुल महजूब में आप सबने पढ़ी होगी, लेकिन आपका जहन उधर नहीं जाएगा कि दाता साहब बयान क्या कर रहे हैं। तो थ्योरी ऑफ वननेस बयान की, उसमें गालिबन 35 थ्योरीज टेकअप की है दाता साहब ने। एक थ्योरी को, थ्योरी ऑफ वननेस को पकड़ा है, उसको डेवलप किया, आखिर तक ले गए और वहां जाके उसकी खुद ही नेगेशन कर दी कि नहीं ये नहीं, ऐसे नहीं हुआ। फिर दूसरी थ्योरी पकड़ी, उसको डेवलप किया, ऊपर तक ले गए और कमाल तक पहुंचाने के बाद उसे खुद नेगेट कर दिया कि ये गलत है। वो गालिबन 35 अगर मुझे सही फिगर याद है। तो मैंने उनकी, चूंकि मैं लेग पुलिंग कर रहा था मजाक में, तो मैंने कहा आप जरा पढ़ के आइए, तो फिर मैं आपसे पूछता हूं कि थ्योरी ऑफ साइलेंस ये क्या है और थ्योरी ऑफ वननेस ये क्या है। बात यह है कि मुर्शिद का तो आपको फायदा एक यही है, और मुर्शिद जब आपको देता है इल्म तो वो आपको ये कशफ करामात की तरफ न सिर्फ ये कि नहीं लेके जाता बल्कि उसे कंडेम करता है, वो आपको रोकता है कि इधर तवज्जो मत दीजिए, अदरवाइज आपकी राह खोटी हो जाएगी कशफ व करामात की तरफ। वो आपको मना करता है कि जब तक मैं इजाजत न दे दूं किसी के लिए दुआ ना करना। ये नहीं है कि उसको कोई आपसे खौफ है कि आप आगे न निकल जाएं, या मुर्शिद को ये खौफ है कि आप बहुत बड़े पीर हो जाएंगे तो मुझे कोई सलाम नहीं करेगा, न उसके मुर्शिद के पेट में कोई दर्द उठता है आपकी दुआ कर देने से। वो आपको बचा रहा है असल में, क्योंकि डर ये है कि दुआ तो आप कर लेंगे, कबूल भी हो गई है। जब आपकी की हुई दुआ कबूल हुई तो लोगों ने आपको मानना शुरू कर दिया कि आप वलीअल्लाह हैं, और वो आ गया आपके पास और आके उसने कोई आपसे बात पूछ ली कि ये मकाम लाहूत क्या है, मकाम हाहूत क्या है, मकाम हैरत क्या है। कोई एक सवाल पूछ लिया, कोई यही सवाल पूछ ले कि साहब जो मेरे पास कैश पड़ा उस पर तो 2.5% ज़कात हो गई, जो मकान मेरे इस्तेमाल में है उस पर कोई ज़कात नहीं है, लेकिन दो और मेरे मकान हैं उन पर ज़कात कितने परसेंट दूंगा मैं। आदमी उसका मुंह देख रहा है टकटर बैठा हुआ, तो इसका नतीजा तो देखिए होगा क्या कि पूछने वाले का एतमाद खत्म हो गया दुआ करने वालों पर, कि जिसको इतना नहीं पता उसने मुझे गाइड क्या करना है। तो मुर्शिद जो है आपको इल्म देता है, और इल्म के नतीजे में एज ए बाय प्रोडक्ट ये चीजें खुद ब खुद आ जाती हैं, जिनके पीछे हम दौड़ते दौड़ते पागल हो जाते हैं, वो कशफ करामात और मुस्तजाबुद्दावात होना है। तो मुर्शिद का इस्तेमाल आला तरीन ये है कि उससे इल्म ले लीजिए ताकि हम किसी मकाम पर पहुंचे। अब जैसे मैंने कशफुल माजूब की मिसाल दी, आप सबने पढ़ी है, हम सभी पढ़ते हैं, लेकिन ये जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, कितने लोगों ने इस पर गौर किया होगा कि इसके अंदर ये थ्योरी ऑफ साइलेंस उन्होंने एक्सप्लेन की हुई है पूरी। वो थ्योरी ऑफ साइलेंस क्या है कि जहां जिस मकाम पर अक्ल हमारी दंग रह जाए, कुदरत इलाही कारखाना है, इलाही कारखाना है कुदरत, उसको जब हम देखें उस मकाम पर, जिस मकाम पर जाके हमारी अक्ल जवाब दे जाए, तो नतीजा यह होगा कि वो हैरत हमारी इतनी बढ़ जाएगी कि हमारी जुबान गंग हो जाएगी, जुबान चल नहीं पाएगी, हम खामोशी में चले जाएंगे। तो फकीर जब उस मकाम पर चला जाता है जहां वो मुशाहिदा करता है कारखाने कुदरत का, और वहां ऐसी चीजें देखता है कि उसकी अक्ल जवाब दे जाती है, अक्ल साथ नहीं देती, उस मकाम पर जाकर वो खामोश हो जाता है। जो खामोश नहीं होता उस मकाम पर बोलता है वो फकीर नहीं है, इसलिए कि वो मुशाहिदा कर ही नहीं पाया, अदरवाइज उसकी अक्ल जवाब दे जाती बिल्कुल, और वो खामोशी में चला जाता है। ये थ्योरी ऑफ साइलेंस मैंने दो लफ्जों में बयान कर दी, इसको बहुत लंबा करके एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन दाता साहब ने उसको, अब वो इस तरह से बयान हुई भी है। अब अगर मुर्शिद आपको पढ़ाएगा कशफुल महजूब तो वो उसके उन पहलुओं को आयां करेगा आप पर जो पहलू छुपे हुए हैं। मुझ जैसे से पढ़ेंगे तो जो अबारत लिखी है मैं उसको एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा, बस इतना ही फर्क है एक मुर्शिद में और एक मुझ जैसे अनपढ़ आदमी में, कि मैं उसको अबारत को अल्फाज को एक्सप्लेन कर रहा हूंगा, मुर्शिद आपका उसके पीछे छुपे हुए जो असरार हैं उनको एक्सप्लेन करेगा। तो मुर्शिद के पास जब आप बैठते हैं तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है जिसमें से शागिर्द गुजर रहा होता है, कि मुर्शिद साहब के पास बैठा, मुर्शिद खामोश हैं, बोल नहीं रहे, आप घंटा उनके पास बैठे, उठकर चले आए, ये मत समझिए कि सीखा नहीं आपने, इसलिए कि मुर्शिद के हरकात और सकनात, वो भी इल्म है। मुर्शद ने किसी को किस अंदाज में देखा, ये भी इल्म है। तो वो जो खामोशी में उसके पास आप बैठे, तो भी सीखा आपने। और अगर किसी दिन मुर्शद ऐसी कैफियत में आ गए कि वो उबलना शुरू हो गए और चीजें छलकनी शुरू हो गई, बाहर आनी शुरू हो गई उनसे, तो फिर तो बहुत ही मजा आ गया कि ऐसी ऐसी बात बयान कर देंगे वो कि सुन के ही आदमी हैरत के मारे चुप हो जाता है कि ये क्या हुआ। तो शॉर्टकट नहीं है, एक लंबा सफर है जो मुर्शद की माहियत में कटता है। हर लम्हे सीखता है। मुर्शद पर्दा फरमा गए तो भी एक कनेक्शन कायम रहता है, इसलिए कि आपके मुर्शद, जिनको आपने मुर्शद समझा माना, वो मर्द कामिल होंगे, वलिये कामिल होंगे। उनके तसर्रुफात, उनके पर्दा कर जाने के बाद खत्म नहीं होते, बल्कि कई गुना बढ़ जाते हैं, तेजी कई गुना बढ़ जाएगी। तो जब भी आप अपने मुर्शद साहब का तसव्वुर बांधेंगे, आपका राब्ता कायम होगा। आप कभी आजमा के देख लीजिए कि कोई एक नुक्ता ज़हन में इल्म का फंस गया, हल नहीं हो रहा, आप तसव्वुर बांधिए मुर्शद का और वहां कम्युनिकेट कीजिए। 2-3 मिनट के अंदर अंदर ज़हन में एक ख्याल आएगा और वो नुक्ता हल हो जाएगा। ये आपके मुर्शद के तसर्रुफात हैं। अब यहां पे एक चीज की एहतियात कर लेनी पड़ेगी आपको, ये बहुत अहम बात है, अगरचे हम उसको अहमियत नहीं देते। जब हम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे थे तो गोरा हमें पढ़ाता क्या था, हालांकि उस लेवल पर, मास्टर्स के लेवल पर इन चीजों का पढ़ाना बेमायनी था हमारे सोच के मुताबिक। आज तो नहीं मैं कह सकता बेमायनी था, उस वक्त जरूर कहता था कि इसमें क्या है। वो यहां तक सिखाता था कि जब आप किसी से मिलने गए हैं तो आपने अपना विजिटिंग कार्ड, बिजनेस कार्ड किस कोने से पकड़ना है और किस तरह उसके आगे पेश करना है। वो ये सिखाता था कि कोई आपसे मिलने आया है तो एक्सचेंज ऑफ बिजनेस कार्ड जब होगा तो आपने किस तरह से उसका बिजनेस कार्ड रिसीव करना है और अपना बिजनेस कार्ड उसको किस अंदाज में पकड़ के उसको देना है। इस बात पर बहुत जोर देता था कि आप जब किसी के पास विजिट करने जाएंगे, तो उन दिनों यूरोप में एक ही छुट्टी हुआ करती थी संडे की, तो वो एक बात पर जोर देता था कि सैटरडे को 12 बजे के बाद कभी मिलने ना जाइए किसी के पास, इसलिए कि जो ही 12 बजे हैं, अब 2 बजे उसका ऑफ हो जाना है क्योंकि सैटरडे हाफ डे है। तो 12 बजे के बाद वो मेंटली छुट्टी के मूड में आ गया है, ही इज नॉट इन ए मूड टू रिसीव एनीवन एनीमोर। तो आप उसके लिए अनवेलकम विजिटर होंगे और उसके अंदर झुंझलाहट पैदा होगी, तो आपका काम जो होना है वो नहीं होगा। तो अवॉइड कीजिए सैटरडे 12 बजे के बाद किसी के पास जाना। इसी तरह मंडे मॉर्निंग किसी के पास 10 बजे से पहले मत जाइए कि वो वीकेंड से वापस आया है, दफ्तर में आके 8 बजे सुबह वो बैठा है, अब वो अपने पूरे वीक को प्लान कर रहा है कि मैंने इस पूरे वीक में क्या क्या करना है, कब कब करना है। आप जा धमकेंगे, वो शो तो नहीं करेगा लेकिन अंदर से अनॉय होगा। तो आप ऐसे विजिटर बनिए जो वेलकम विजिटर है, अपने आप को इम्पोज मत कीजिए कभी किसी पे। ये दुनियावी तालीम का हिस्सा था हमारे मुर्शद के साथ। अभी बहुत से लोगों ने एक सवाल पूछा कि मैं तुर्की जाता हूं, ईरान, इराक, मदीना मुनव्वरा, तो जो लोग मेरे साथ अगर कभी मुझे मिल जाए, मेरी एफर्ट तो ये होती मैं अकेला जाऊं, लेकिन अगर मैं फंस गया तो जो साथ हैं वो परेशान ये हो जाते हैं कि इतना लंबा सफर करके मैं आया और मैंने हाजिरी दी है मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट मैक्सिमम, उसके बाद चला गया। उसके पीछे एक बड़ी बात है, ये लोग इनमें से कुछ साहिब ड्यूटी होते हैं, इनकी मसरूफियात होती हैं, दूसरी तरफ उनकी तरबियत और उनके अखलाक की तरबियत हुई भी है, उनके लिए मेहमान इम्पॉर्टेंट आदमी है, तो वो अपना काम का छोड़ के मेरी तरफ मुतवज्जो हैं पूरी तरह। तो अगर मैं किसी की तवज्जो ज्यादा देर हासिल करता हूं उसके काम में हर्ज होता है। नतीजा क्या होगा कि एक दो बार तो मैं वेलकम कर लिया जाऊंगा, उसके बाद मैं एक इंट्रूडर की हैसियत अख्तियार कर जाऊंगा। तो सब में बेहतर यह है कि गया, सलाम किया, फातिहा पढ़ी और इजाजत की रिक्वेस्ट की कि हुजूर मुझे इजाजत है रुखसत होने की, और चले आए। खुद आप लोग अपने दिल में एक मिनट के लिए सोचिए कि आपका एक वो विजिटर है जो आता है और वो बैठ जाता, जाने का नाम नहीं ले रहा। अब अज़राए अखलाक आप बैठे हैं, उससे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आपके काम का हर्ज हो रहा है। तो दो चार मरतबा तो बर्दाश्त कर गए अज़राए अखलाक, उसके बाद आपके दिल में उसके लिए वो गर्म जोशी नहीं रहेगी। लेकिन इसके बरक्स एक आदमी है, आपके पास आता है, सलाम करता है, उसके बस मुझे इजाजत देंगे आप, सलाम अलैकुम, और चला गया। यह ऐसा विजिटर आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि उसने अपना काम किया और भाग गया। मैंने यहां एक बार जिक्र किया था कि किसी वजह से मुर्शिद साहब बहुत, जिन दिनों नया नया मैं मिला था मुर्शिद साहब से, उन दिनों की बात है, मैं मुर्शिद साहब को पहचान भी नहीं पाया था, तो किसी बात पर मैंने जाना बंद कर दिया मुर्शिद साहब के पास। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, बहुत बुलंद पाया, बाबा सैयद ताजुद्दीन औलिया नागपुर में आराम फरमा रहे हैं, उनसे मुलाकात हो गई ईशा की नमाज के बाद, तो उन्होंने कहा कि वहां चले जाओ, उनसे दुआ के लिए कह दो, ये काम हो जाएगा तुम्हारा। तो मैं दिल में कहा अल्लाह मुझे माफ फरमाए, ये उन दिनों की बात है जब मैंने पहचान नहीं पाया था, तो वो पागल आदमी है, उनके पास जाके क्या करूंगा मैं। नेक्स्ट डे फिर बाबा सैयद ताजुद्दीन औलिया साहब से ईशा की नमाज के बाद मुलाकात हो गई, उन्होंने फिर मुझे समझाया कि वहां चले जाओ, उनसे दुआ का कहो, वो कर देंगे और काम हो जाएगा तुम्हारा। नहीं गया, तीसरे दिन बड़ी लंबी बात की बाबा सैयद ताजुद्दीन औलिया ने, तो मैंने एक और साहब थे जो बाबा सैयद ताजुद्दीन औलिया ही के सिलसिले में बैठ थे, तो उन्होंने कहा कि इससे अच्छी और क्या बात है, आपका तो हज हो गया कि बाबा साहब आपके पास तशरीफ ले आते हैं, तो जो फरमा रहे हैं उस पर अमल कर लें। तो मैं दूसरे तीसरे दिन अपने मुर्शिद साहब की खिदमत में हाजिर हुआ, तो उन्होंने मुझे देखा, कहने कैसे आए, तो मैंने कहा हजूर सलाम अर्ज करना था, कर लिया सलाम, मेरे के जी के जाओ। अब उस वक्त तो मेरे दिल में नहीं आई ये बात कि ये क्यों कहा गया मुझे, तो मैंने कहा मैं तो पहले कहता था कि बंदा पागल है, लेकिन वो काम जरूरी था। फिर दो चार दिन के वक्फे के बाद फिर गया, तो उन्होंने बड़ी खुशदिली से पूछा कैसे आए, तो मैंने कहा हजूर गुजर रहा था इधर से, सोचा आपसे कप चाय पीता जाऊं, कि हाँ बैठो मैं अभी पिलाता हूं, तो चाय बना के उन्होंने मुझे पिलाई। जब मैंने चाय पी ली, कहने की चाय पी ली तुमने, मैंने कहा जी, कि जाओ। तीसरी बार खैर मुझ पर तरस खा लिया उन्होंने, आज खुद पूछा कि कोई तुम्हें काम है क्या मुझसे, तो मैंने कहा जी हाँ, क्या काम है, तो मैंने बता दिया। बाकी किस्सा तो चूंकि आपके मतलब का नहीं, इसलिए मैं बयान नहीं कर रहा। अब आप देखिए कि वो बहुत अरसे के बाद ये बात मुझे समझ आई कि मैंने सलाम किया, पूछा कि कैसे आए, कि जी सलाम करना था, सलाम कर लिया कि जी हाँ कि जाओ। ये असल में तरबियत हो रही थी मेरी कि मुनाफ़क़त मत करो, जिस काम से आए हो सीधा बोलो, काम तुम्हारा कोई है, मुझे चक्कर दे रहे हो कि मैं सलाम करने आया हूं, तो तरबियत का ये तरीका है कि तुम्हें सलाम करने के बाद जाओ। अब दूसरी बार मैंने बहाना बनाया कि चाय पीने आया हूं, कहां बैठो, चाय पी ली, जाओ। ये तरबियत थी कि जिस काम से आए हो स्ट्रेट वे वो बोलो, गलत बयानी मत करो तुम। अल्हम्दुलिल्लाह वो सबक मिल गया। मैं ये तो नहीं कहता कि सबक हासिल हो गया, इसलिए कि वो सलाहियत ही नहीं कि मैं कुछ सीख सकूं किसी से, लेकिन वो इतनी बड़ी तरबियत थी। अभी उसका नतीजा क्या हुआ है, तमाशा। एक तो किसी को मैं बिला वजह टेलीफोन नहीं करता, वो बात का दो दो तीन तीन साल बीत जाते हैं, टेलीफोन ही नहीं करता। जब करूंगा तो अगला पूछता है कि खैरियत आपने, कैसे तकलीफ की, तो पहला जुमला ये होता है कि भाई आज के दौर में बगैर गर्ज के कौन किसे टेलीफोन करता है। तो अगला हंस के पूछेगा जी क्या, कि ये काम है कर दो, अच्छा हो जाएगा, ओके थैंक यू वेरी मच, टेलीफोन बंद। ये उस तरबियत का मुर्शिद की नतीजा ये निकला है कि कोई भी हो, किसी स्टेटस का आदमी हो, उसका सीधी बात है कि जनाब बगैर गर्ज के कौन किसी को मिलता है आज के जमाने में। तो मैंने अगर कॉल किया तो किसी गर्ज से किया होगा, अगला भी कह के लगाता है, और बजाय इसके कि वो बुरा मना जाए वो अप्रिशिएट करता है। तो ये मुर्शिद की तरबियत थी। बात ये हो रही थी कि मुर्शिद को पहचान लीजिए पहले। अगर मुर्शिद हैं जनाब सरकार से दिलाउद्दीन अली अहमद साबिर साहब, कलियर शरीफ वाले, उन जैसे, तो जहां आप गए उन्होंने आपको उड़ा के रख दिया, तो पहचान जाइए कि मैं मुर्शिद के पास नहीं जाऊंगा, इसलिए कि उन्हें पसंद नहीं कि उनके पास कोई आए। वो दूर से ही कम्युनिकेट कर लीजिए घर बैठे हुए, जवाब आ जाएगा। हजरत मियां मीर साहब जैसे आदमी हैं, तो पहचान जाइए कि ये सिर्फ सिलेक्टिव लोगों से मिलेंगे जिनके साथ इनका दिल मिलता है, सिर्फ उनसे मिलेंगे, बाकी नहीं मिलेंगे ये। तो बाकी जो भी जाएगा वो अपने आप को इम्पोज करेगा, नतीजा ये है कि फायदे के बजाय नुकसान उठाता चला जाएगा। जनाब दादा गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह साहब जैसे हैं मुर्शिद आपके, वो मजलसी हैं, वो हजार हजार लोगों के मजमे में बैठे हुए भी तन्हा हैं। जब दिल चाहेगा वो तन्हा हो जाएंगे, मजमे में बैठे बैठे जब दिल चाहेगा मजमे के साथ शामिल हो जाएंगे, तो वहां फर्क नहीं पड़ता, जाइए बैठिए, जब दिल चाहे उठ के चले आइए, वो फर्क नहीं पड़ता। तो मुर्शिद की नेचर इसमें बहुत काउंट करेगी। बाबा साहब जैसे मुर्शिद हैं अगर आपके, बाबा फरीद गणशंकर रहमतुल्लाह अलैह साहब, तो वहां दो मयार बयक वक्त इख्तियार किए हुए हैं। आम आदमी को माफी है, जैसे जी चाहे बात कर ले, जो जी चाहे कर ले, जो जाएगा कुछ ना कुछ उसको अता कर देंगे। लेकिन जिनकी तरबियत कर रहे हैं, वो जिनको इल्म दे रहे हैं, वहां वो बिल्कुल नो नॉनसेंस टाइप आदमी है। मजा नहीं आप खांस भी जाए वहां, माफ नहीं करेंगे, उधेड़ के रख देते हैं दो मिनट में। लेकिन उनकी, जिनको उन्होंने बतौर शागिर्द के कबूल किया हुआ है और जिनकी वो तरबियत फरमा रहे हैं, तो मुर्शिद की नेचर को समझना बड़ा जरूरी है। हम जाते थे अपने मुर्शिद साहब के पास, मुझे मालूम था कि दिल में बेपना प्यार है, दुनिया को भी पता था, सभी लोग मुझे कहते थे कि जुबान से सख्ती आपके साथ करते हैं लेकिन दिल में बहुत प्यार है इनके आपके लिए। तो उनके वो मकान की पुराने जमाने वाला स्टाइल था, तो डेवड़ी थी, उसके बाद वो सेन में खुलती थी डेवड़ी, और उसकी एक साइड पर आपका हुजरा था। तो बड़े दबे पांव गए डेवड़ी तक, देखा वहां कोई बैठा है, वहीं से वापस आके गाड़ी में बैठ गए गली में, इंतजार करते रहे, वो आदमी निकला तो फिर चले गए। और वो भी जाने से पहले चेहरे को देख लिया कि मूड क्या है, और बाज का देखा कि बिगड़े हुए हैं, तो दूर से सलाम अलैकुम सर, मैं जल्दी में हूं, इजाजत मुझे वापस। पहचान जाइए ताकि आप अपने मुर्शिद के दिल में उतर जाएं। आप मुर्शिद के मिजाज के मुताबिक चलेंगे, मुर्शिद के दिल में उतर जाएंगे। और अगर मुर्शिद झुंझलाने लगा आप पर दिल में, जाहिर तो नहीं कर सकता, इजाजत नहीं है उसको, क्योंकि उसने तो अल्लाह के हर बंदे को खुश दिली से मिलना है, हुक्म तो ये है, सुन्नत ये है, जाहिर नहीं कर सकता, लेकिन झुंझलाया तो समझिए कि आप गए, फिर ना कुछ हासिल हुआ आपको, फिर भटकते रहिए। तो ये राहें लंबी हैं, कहीं शॉर्टकट नहीं है कि मैं जाऊं और मुर्शिद साहब मेरी तरफ एक नजर डालें और मैं एक मकाम पे चला जाऊं। हाँ, ये तो होगा कि मुर्शिद साहब को मैं बड़ा पसंद आ गया पहली बार ही मुलाकात में, तो जो देना है एक बार दे दिया उन्होंने, कह ये लो जाओ। लेकिन वो इसी तरह है कि आपके मुर्शिद लाहौर की सड़क की भूल भलैयों में से हाथ पकड़ के निकाल के मोटरवे के सिरे पर खड़ा कर देंगे कि ये रास्ता जाता है इस्लामाबाद को, चले जाओ। वहां से मेरी अपनी मेहनत और मेरा सफर शुरू हो गया। अब मेरा अपना दिल है कि मैं उस रास्ते पर सीधे पर सफर करूं, मेहनत करूं, और सर्विसेज जो आएंगे रास्ते में मैं उससे डिस्ट्रैक्ट ना हूं, तो मैं इस्लामाबाद 4 घंटे में आराम से पहुंच जाऊंगा। हिम्मत है तो मैं ज्यादा स्पीड पे चला रहा हूं, 2.5 घंटे में पहुंच जाऊंगा। तो मेहनत वहां मेरी है सर, मुर्शिद साहब की ये मेहरबानी है कि छूटते ही उन्होंने मुझे अता कर दिया है, लेकिन मेहनत फिर मेरी ही रहेगी। तो मुर्शिद साहब ने मुझे फारग कर दिया कि जाओ मियाँ, तुम तो पहले से ही बड़े मकाम पर पहुंचे हुए हो, यहां आने की जरूरत नहीं, जाओ जाके लोगों को तालीम दो। तो मैं इस धोखे में ना आ जाऊं कहीं। मुर्शिद साहब ने जो बात की है सच है, लेकिन अगर मैं इस धोखे में आ गया और मैंने अपने सीखने का अमल जारी न रखा, गौर फिक्र जारी न रखा, तो मैं इल्म के उसी मकाम पर खड़ा रहूंगा जहां मुझे मुर्शिद साहब ने खड़ा किया था, आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो ये तो कब्र की दीवारों तक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इस धोखे में मत आइए कि ये लम्हों में कटेगा सफर, ऐसा नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। ये अगला सवाल है कि सुना है कि मर्दाने कामिल को एक खास वक्त में बारगाह रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की में हाजिरी की इजाजत होती है, लेकिन चंद एक को ये इस्तिस्ना हासिल है कि वो जब चाहे हाजिर हो सकते हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन हैं, वहां स्वाय रहमत के कुछ नहीं है, दुश्मन के लिए भी मेहरबानी और रहमत ही है, लेकिन वो ऐसा मकाम अदब है कि फरिश्ते भी मोहतात रहते हैं, फरिश्ता भी बगैर इजाजत बगैर तलबी के हाजिर नहीं होता। अगर मेहरबानी फरमा दें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी वक्त भी वेलकम कर लें, तो अभी तो वो बात मैंने की, मैं तो मुर्शिद साहब की बात कर रहा था, ये तो बारगाही रब के बाद सबसे बड़ी और सबसे ऊंची है। तो अदब का तकाजा ये है कि अगर हर बार आपको वेलकम भी किया जाए तो कोशिश ये करनी चाहिए कि मैं हाजिर उस वक्त हूं जब मुझे तलब कर लिया जाए। तो इंसान बचा रहता है और बहुत कुछ पा के आता है, जब भी तलब किया जाएगा बहुत कुछ, जिसको वो महाव्रतन कहते हैं कि लाद लदा के भेजा जाएगा वापस, क्योंकि हस्ती वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी है। तो अगर इजाजत मिल भी जाए तो इंतजार कीजिए कि जब तलब किए जाएं तो फिर जाएं आप, बहुत फायदा होगा इस अदब का। ये अगला सवाल है कि जब किसी वली अल्लाह को अपने गिर्द पेश में होने वाले सहने का वक्त से पहले पता चल जाता है तो क्या खल्के खुदा के लिए इस सहने से महफूज रहने की दिल ही दिल में दुआ करते हैं, या दुआ करना चूंकि उनके नज़दीक मशीयत एसदी में मुखल होने के मतरादिफ होता है इसलिए वो खामोश रहते हैं? वो डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। ये तो वली अल्लाह हैं, मैं पैगंबरों की एग्जांपल दे देता हूँ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब नाजिल हुआ तूफान की सूरत में, सैलाब की सूरत में, तो क्या वो दुआ करके उसे टाल नहीं सकते थे? उनका बेटा किश्ती में सवार नहीं हो पाया, तो ये इस बात को वाज़े कर देगा। तो क्या डांट पड़ी रब ताला से जब दुआ की बेटे के लिए? कुरान पाक में है, डांट खाली। इसी तरह और लोग और पैगंबर, बात यह है कि डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, कि जो चीजें रब ताला भेजना चाहता है उसको रोकने की दुआ करने की सजा मिल जाती है, जिनका होना जरूरी हो गया। जो चीजें अवॉइड की जा सकती हैं उसके लिए औलिया किराम दुआ भी करते हैं और दवा भी करते हैं, दोनों बातें। तो ये सिचुएशन की बात है, इसीलिए फकीर लोग ऐसी चीजों के, ऐसे सवालात का जवाब देने से अवॉइड कर जाते हैं कि बहुत मुश्किल है इसको एक्सप्लेन कर देना, और बाज़ुकात एक्सप्लेन करते करते बेख्याली में वो पैरामीटर्स वाज़े हो जाते हैं जिनके अंदर रह के औलिया किराम ड्यूटी करते हैं, और उसकी सजा बड़ी कड़ी है, इसलिए इनको अवॉइड करते हैं। जहाँ तक मैं कह सकता था मैंने अर्ज कर दिया आपको मिसालें दे के, अपने जिम्मे फिर भी लेने से अवॉइड किया के डंडे पड़ जाएंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट संडे आपसे मुलाकात होती है, उस वक्त तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।